நமோம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமினிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேச தாரிணே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவிருந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ராம் ஹரே ஹரே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீமத் பாகவதம் அஷ்டம் ஸ்கந்த் அத்யாய் ஏக் ஸ்லோக் சங்கியா 12 கி ஆவர்த்தி கரேங்கே ந யஸ்யா தந்தோ மத்யம் ச ஸ்வபரோ நாந்தரம் பஹி விஸ்வஸ்யா முனி யத்யஸ்மாத் விஸ்வம் ச தத்ரிதம் மஹத் ந யஸ்யா தந்தோ மத்யம் ச ஸ்வபரோ நாந்தரம் பஹி விஸ்வஸ்யா முனி யத்யஸ்மாத் விஸ்வம் ச தத்ரிதம் மஹத் ந யஸ்யா தந்தோ மத்யம் ச ஸ்வபரோ நாந்தரம் பஹி விஸ்வஸ்யா முனி யத்யஸ்மாத் விஸ்வம் ச தத்ரிதம் மஹத். மாதாஜி, சப்தார்த்த ந நோ யஸ் ஜிஸ்கா மனே பகவான் கா ஆதி பிராரம்ப அந்தோ அந்த மத்யம் மத்ய ச பி ஸ்வ அப்னா பர பராயா ந நேதோ அந்தரம் பீதர் பஹி பாஹர் விஸ்வஸ்ய சம்பூர்ண விஸ்வகா अमूनी ऐसा विचार, यत जिसका, जिसका रूप, यस्मात उससे, जो हर वस्तु का कारण है, विश्वम समग्र ब्रह्मांड, च तथा तत् वे सब, रितम सत्य, महत अत्यंत महान। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, भगवान का न तो आदि है, न अंत और न मध्य, न ही वे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के हैं, उनका न भीतर है और न बाहर है। इस जगत में दिखने वाले सारे द्वंद, यथा आदि तथा अंत, मेरा और उनका, उस परम पुरुष में अनुपस्थित हैं। ये ब्रह्मांड जो उनसे उद्भूत होता है, उनका दूसरा स्वरूप है। अतएव भगवान परम सत्य है, रितम परम सत्य है, और उनकी महानता पूर्ण है, महत। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में 5.1 भगवान कृष्ण का वर्णन मिलता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है। तो भगवान के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे सभी वस्तुओं के कारण हैं। वे प्रत्येक वस्तु में रहते हैं, जैसे कहा गया कि माया तदमिदम सर्वम। उनका विस्तार सभी वस्तुओं में है, किंतु वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। वे अचिंत्य भेदाभेद हैं, अर्थात एक साथ एक तथा भिन्न हैं। इसी की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। भौतिक दशा में आदि मध्य तथा अंत की धारणा होती है, लेकिन भगवान में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ब्रह्मांडीय स्वरूप वही विराट रूप है जो भगवद गीता में अर्जुन को प्रदर्शित किया गया था। अतएव वे सर्वज्ञ, अतएव वे सर्वत्र तथा सदैव विद्यमान रहने के कारण परम सत्य तथा महानतम है। उनकी महानता पूर्ण है। ईश्वर माने कृष्ण महान है, किंतु वे किस तरह महान है, इसी की व्याख्या इस श्लोक में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जो सुन रहे हैं ये 2-3 दिन से, यह है स्वयंभू मनु की स्तुति। इसमें स्वयंभू मनु भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन किए हैं, और यह श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भगवान के कई गुणों का वर्णन किया गया है, तो हम एक एक शब्द की इसकी व्याख्या डिटेल में करेंगे। थोड़ा सीरियस होके इसको आप सुनिएगा और जिसको नींद आती है वो थोड़ा नोट बनाए तो फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा भगवान के गुणों के बारे में इसकी व्याख्या है। तो न यस्यादंतो मध्यम च स्वपरो नांतरम बही। वैसे ये पूरे गजेंद्र जी की स्तुति जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4 इनमें चारों अध्याय में एक स्तुति तो ये है और दूसरी आएगी गजेंद्र जी की स्तुति। तो अभी अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इन स्तुतियों को बड़े ध्यान से हम लोग सुने, क्योंकि भगवान ने खुद भी कहा है, परीक्षित महाराज ने भी कहा है कि इन चार चैप्टरों का जो भी कोई पाठ करता है उसको धन्यम यशस्म कलिकल्म शापहम, धन प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और पर्टिकुलरली जो गजेंद्र जी की स्तुति है उसको जो कोई सुबह उठ करके और उसका पाठ करता है तो उसको मरने के समय भी विमलाम मतिम, मतलब शुद्ध उसकी मति रहती है। माने कृष्ण मरने के समय तो देखो हमको कोई होश वश रहता नहीं है, हमारे सब नलें लगे लगे रहती है, इंजेक्शन लगे रहते हैं, पता ही नहीं रहता कि हम क्या हैं, बेहोश से रहते हैं। उस समय भी कृष्ण का स्मरण हमको होता है यदि रोज इस स्तुति का पाठ किया जाए, गजेंद्र जी की स्तुति का जो थर्ड अध्याय में है। तो इसलिए ये चारों चैप्टर बड़े सावधानी से आप लोग सुनने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यस्यादंतो मध्यम च स्वपरो नांतरम बही विश्वस्यामुनि यद यस्मात् विश्वम च तद रितम महत। तो अब श्री मनु महाराज भगवान के स्वरूप के नित्यत्व का और प्रतिपादन करते हुए कहते हैं भगवान का स्वरूप नित्य है, जबकि इस संसार की प्रत्येक वस्तुएं और प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अनित्य है, टेम्पररी। प्रत्येक वस्तु का इस संसार में आदि है और अंत है तथा मध्य की स्थिति है। ये तीन वर्ड देखिए इस श्लोक में पहले लाइन में आया है। तथा सबके भीतर कुछ है और बाहर भी कुछ है, अंतर बही। तथा सबकी दृष्टि में कोई अपना है, कोई पराया है, परंतु भगवान में यह सब नहीं है। न यस्य आद्यंतो माने आदि अंतो, आद्यंतो माने आदि अंतो, आद्यंतो भगवान का कोई आदि नहीं है। आदि, आदि का अर्थ है होता है कि प्रारंभ, बिगिनिंग। भगवान का कोई भी बिगिनिंग नहीं है, स्टार्टिंग कुछ नहीं है, भगवान की कोई शुरुआत नहीं है कि वे इस समय जन्म लिए, इसलिए कृष्ण को कहते हैं ना अजन्मा, या इस समय सत्ता में आए भगवान, स्थिति में आए आदि। तो भगवान ही आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। तो न यश आद्यांतो, न भगवान कभी हुए हैं और न आगे चल करके भगवान समाप्त होने वाले हैं। यह भगवान के स्वरूप की स्थिति है, इसको कहते हैं नित्यत्व, परमानेंट नित्यत्व। नित्य है और इस संसार में कोई भी देवता या मनुष्य या नार, नाग या नर, कोई भी इस संसार में आदि नहीं है, बल्कि क्या है, बोले सादी है, सादी है। उनकी ही शुरुआत होती है, प्रारंभ है। जैसा हम मनुष्यों में सर्वदा यह लिखा जाता है कि जन्मदिन, हमारा बर्थडे, तो डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं, तो उसके बिना पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारा, कब हम जन्म लिए। तो सर्वत्र आवश्यकता होती है इस बर्थ डेट की, आपकी उम्र कितनी है, हमेशा पूछा जाता है ये। तो सदा ये पूछा जाता है कि आपकी उम्र कितनी है, तो प्रारंभ हो गया ना, हमारा तो प्रारंभ हो गया, जन्म हुआ और एक दिन निधन भी हो जाएगा, मर जाएंगे हम। वैसे मरने वाला आदमी तो यह नहीं लिखेगा कि मेरा ये मरने का डेट है, लेकिन बाद वाले लोग लिखेंगे कि इस समय इसका निधन हो गया, ही एक्सपायर्ड। और एक वर्ष पूरा होने पर फिर तो वर्षगांठ भी मनाएंगे उसकी मरने की, तो इसका मतलब क्या है, अंत भी है। तो आदि भी है, अंत भी है। तो हमारा अंत है सबका, प्रारंभ है और अंत है, और प्रारंभ और अंत के बीच की जो स्थिति है उसको मध्य कहते हैं। भगवान ऐसे नहीं है, कृष्ण ऐसे नहीं है। न यस्या जन्तो मध्यम च, न भगवान का कोई आदि है, न उनका कोई अंत है, न उनका कोई मध्य है। जब आदि और अंत ही नहीं है तो फिर मध्य कहां से आएगा? तो जिसका आदि और अंत नहीं है तो मध्य के, और आप निर्धारित कैसे करेंगे कि उसका मध्य है? बीच की स्थिति नहीं हो सकती ना, जब आदि और अंत ही नहीं है। तो मनुष्यों का देखो क्या है, मध्य है। जवानी उमड़ती है, इसको समझ लो अपन मध्य मान लेते हैं, यंग एज को। छोटा सा बच्चा है उसको समझ लो आदि मान लेते हैं, बोलता है, खेलता है, खाता है, अज्ञ मनुष्य, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता उस समय कुछ भी। और उसके बाद बुढ़ापा आता है, ये हम अंत मान सकते हैं इसको, मृत्यु बुढ़ापा के बाद होती है, तो समाप्ति। और इसके बीच में मनुष्य का तो पता नहीं क्या क्या काम करता है और क्या क्या उपाधियां वह लेता है, तो नाम बदल जाते हैं कई कई। जैसे छोटा बच्चा रहता है उसमें बहुत नाम विकसित नहीं होते हैं उसके, लेकिन आगे चल करके कुछ काम करता है तो नाम हो जाता है। जैसे स्टूडेंट, पढ़ाई किया तो उसको हम स्टूडेंट बोलने लगते हैं, कभी पॉलिटिक्स में चला गया गवर्नर हो गया किसी राज्य का, या प्राइम मिनिस्टर हो गया देश का, ये आदि आदि आदि। लेकिन बाद में ये सभी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, और प्रारंभ में तो रहती नहीं है। बच्चा जब हुआ उस समय ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, जब मर गया उसके बाद भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो मनुष्य के पास जो कुछ भी है, या किसी देवता के पास भी, उसकी शुरुआत है, बिगिनिंग है, प्रारंभ है। न ज्ञान प्रारंभ में रहता है, न धन प्रारंभ में रहता है, और न तो शारीरिक वैशौष्ठव सुंदरता प्रारंभ में रहती है, कुछ भी नहीं रहता है, और अंत में सब समाप्त हो जाता है। तो इस तरह आदि है और अंत है, तथा बीच की स्थिति है मध्य। परंतु भगवान का, कृष्ण का ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार एक श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान न हुए हैं और न होंगे, और न आज हैं। क्योंकि यदि हम ये कह देते हैं कि वे आज हैं, तो ये कहते ही तो ये कहना पड़ेगा, ये शब्द की ऐसे पकड़ होती है, ये कहना पड़ेगा कि फिर कब हुए थे बताओ, कब वो चले गए वो बताओ, मध्य कब था वो बताओ। इसलिए अपना भगवान स्वयं ही आत्मा के विषय में और अपने विषय में, खुद के विषय में और जीव के विषय में भगवान कहते हैं कि नायम भूत्वा भविता ना वान भूय है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण है। भगवद गीता 220 यह आत्मा न तो हुआ है, न है और न होगा। वा का जो अर्थ है इसमें, वा न भूय, वा का अर्थ है कि ये कभी जन्म नहीं लिया है आत्मा, और न तो आगे चल करके यह होगा। होने का अर्थ है कि आगे चल करके कोई इस दूसरे रूप में होगा, या विकृत होगा, या बढ़ेगा घटेगा, जो कुछ होगा ऐसा कुछ भी नहीं है।
होगा ही नहीं।
तो नायम भूत्वा न भविता वान भूय है अजह नित्य शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्य माने शरीर शरीर के हन्य माने मैंने शरीर के मरने पर यह मरता नहीं है आत्मा यह अज है अजो नित्यम अज है यह नित्य है और पुराण है और शाश्वत है चार चीज देखो बताई गई है वास्तव में लगभग एक ही अर्थ है इन चारों चीजों का कहने के लिए भगवान चार शब्द का प्रयोग यहां पे कर रहे हैं कि अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो चार चीज वे बोल रहे हैं तो ये अज है और नित्य है शाश्वत है और पुराण है आज का अज का अर्थ क्या होता है कि यह जन्म नहीं लेता है इसका जन्म नहीं होता है आत्मा का शरीर का जन्म होता है अजय नित्य है और अजय के बाद नित्य है ये नित्य है आत्मा कभी इसका प्रारंभ नहीं होता है ये सदा से है और सदा रहेगा इसको नित्य कहते हैं और शाश्वत का लगभग यही अर्थ होता है जो नित्य का अर्थ होता है नित्य का अर्थ यह है कि यह बहुत पहले से है और शाश्वत का अर्थ है कि यह सदा रहेगा और पुराने का अर्थ है कि यह पुरातन है यह आज का नहीं है तो पुरातन कोई काल की सीमा नहीं है इसके अंदर क्योंकि पुरातन कहते थे ये हो गई कितने वर्ष पहले काल की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती है इसमें कि जीव कब से है या भगवान कब से हैं कोई काल की सीमा नहीं है तो इस श्लोक में जो श्री मनु महाराज भगवान के स्वरूप उनके श्री विग्रह नाम और गुण लीला धाम आदि के नित्यत्व का वर्णन कर रहे हैं मैंने यह श्लोक यह बताता है कि भगवान का श्री विग्रह नित्य है भगवान का नाम नित्य है भगवान के गुण नित्य हैं, भगवान की लीला नित्य है भगवान का धाम नित्यत्व है नित्य है तो न यश्याद्यंतो इसकी व्याख्या हुई न यश आदि अंतो न और न मध्यम और न स्व न पर अब इसकी देखिए भगवान का न स्व उनका न कोई अपना है और न पर न कोई उनका पराया है इस संसार में तो देखो प्रत्येक व्यक्ति का कुछ अपना है स्व है स्व का अर्थ धन भी होता है अपना घर भी है उसका उसका खुद का धन है खुद धनी हो जाएगा तो बोले मेरा धन है ये तो स्व आ गया तो धन है घर है परिवार है मानता है कि यह हमारा घर है यह हमारा परिवार है यह हमारा धन है यह हमारा अकाउंट है बैंक में हमारा यह है हमारा यह है हम अमेति मम मेरा है मेरा है और कुछ चीजों को वो दूसरे को दूसरे की मानता है यह पर है स्व पर है यह दूसरे की मानता है यह दूसरे का है तो यह है वो है परंतु भगवान की दृष्टि में भगवान के लिए कोई स्व नहीं है न कोई उनका पर है स्व इसलिए कहा जाता है कि नहीं है कि क्योंकि जो ही ये स्व कहा जाएगा तो पर भी कहना पड़ेगा तो भगवान का तो पर है कुछ है ही नहीं ना भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं भगवान के लिए तो सब कुछ तो भगवान का है इसलिए भगवान की दृष्टि में यह भावना नहीं होती है कि यह मेरा है मेरा की भावना जो ही आएगी त्यों ही यह उपस्थित होगा कि फिर और क्या दूसरे का है क्या कोई माने ये चीज मेरी है तो फिर ये बाकी चीज क्या दूसरे की है क्या ये भगवान के लिए आएगा ये प्रश्न इसलिए स्वयं नहीं लगाया जाता है भगवान में और फिर पर का तो कोई प्रश्न ही नहीं है जब स्वयं ही नहीं है तो फिर प्रश्न कहां से आएगा तो नांतरम न बही भगवान के श्री विग्रह के भीतर उनके स्वरूप के भीतर कुछ भी नहीं है जबकि शास्त्र कहता है कि भगवान के भीतर ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अब देखो शास्त्र कहता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के भीतर है और ये श्लोक कहता है कि भगवान के भीतर कुछ नहीं है, ये कैसा? जैसे मां यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व का दर्शन करा दिया, अर्जुन को भगवान ने दर्शन कराया, तो यह भगवत स्वरूप का यहां पे वर्णन किया जा रहा है। सावधानी से इसको सुनना चाहिए कि भगवान के भीतर कुछ नहीं है। नांतरम न बही और न तो उनके बाहर कुछ है। तो यह अद्भुत विज्ञान है देखो भगवान का। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के भीतर भी कुछ है। प्रतिदिन हम लोग टॉयलेट जाते हैं, पेशाब करते हैं, शौच करते हैं, भीतर आते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स और बहुत बहुत चीज हमारे भीतर हैं। और बाहर तो ये सारा संसार भरा ही पड़ा है, बाहर ही सब कुछ है। तो ज्यादातर तो बाहर ही है हम लोगों का, भीतर कितना है? थोड़ा सा है। तो बाहर बहुत है। लेकिन मनु महाराज यहां पे कह रहे हैं कि भगवान के भीतर कुछ नहीं है, अंतह में भी कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है। भगवान के अंतह में कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है। तो उसका उनका जो स्वरूप है, कृष्ण का जो स्वरूप है, वो पूर्ण स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। इसलिए कहते हैं कि उनका अंदर में कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, पूर्ण स्पिरिचुअल है। इसलिए उसमें वास्तव में कुछ और नहीं है, ये स्पिरिचुअलता आध्यात्मिकता के अलावा और कुछ भी नहीं है भगवान के अंदर। तो भगवान के शरीर में ये चमड़ा है, ये खून है, ये हड्डी है, ये मेद है, ये मज्जा है, यह है, ये सब भेद नहीं है भगवान में, कोई भेद नहीं है भगवान में। जैसे कोई मिश्री का आदमी बनाया जाए और उसकी आंख, नाक, कान, हाथ, केश सब कुछ कहा जाए तो मिश्री के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना उसके अंदर। आंख भी मिश्री है, कान भी मिश्री है, सब कुछ उसकी मिश्री है, उसमें कुछ नहीं रहेगा। उसी तरह भगवान चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद है, उनमें दिव्य आनंद और नित्य स्थिति के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम मनुष्यों के शरीर में बहुत बहुत भेद हैं। देखो बाहर चमड़ा है, चमड़े के भीतर मांस है, मांस में एक चर्बी है उसको मेद कहते हैं, और हड्डियां हैं इनको अस्थि कहते हैं, और अस्थियों के संधि में जो मन जॉइंट में जो चर्बी होती है उसको मज्जा कहते हैं, और इसके बाद भी और ब्लड है, रक्त है, मलमूत्र सब भरे पड़े हैं इस शरीर में, बहुत बहुत है, बहुत बहुत भीतर है, और बाहर तो सारा संसार है ही। परंतु भगवान के भीतर कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है। अगर यह कहा जाए कि भगवान के बाहर कुछ नहीं है तो यह बात तो समझ में आ जाती है कि भगवान के बाहर तो कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि भगवान भाई बहुत विशाल हैं तो उनके बाहर तो कुछ संभव है ही नहीं, ये मान सकते हैं हम। परंतु भगवान के भीतर ही तो ये सारा जगत है, ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब भगवान के भीतर ही तो है। तो भगवान गीता में कहते भी हैं कि मम देह गुड़ाकेश यंचान्यद दृष्टुमिच्छसि, भगवद गीता 11:7, कि हे अर्जुन तुम जो कुछ देखना चाहते हो मम देह, मेरे देह के भीतर तुम देख लो, सब कुछ है मेरे देह के भीतर। तो रथ पर भगवान खड़े थे और भगवान के देह के भीतर ही अर्जुन समस्त विश्व का दर्शन किया। तो यह कैसे कहा जाता है कि भगवान के भीतर कुछ नहीं है? लेकिन यह सत्य है कि भगवान के भीतर वास्तव में कुछ नहीं है। भगवान एक ही स्थान पर देखो गीता में कहते हैं, भगवद गीता में, कि जो कुछ भी है सब मेरे भीतर है, और इसके साथ वे यह भी कहते हैं कि मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। जैसे नचमस्थानी भूतानी, भगवद गीता 9:5, यानी मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मत स्थानी भूतानी जो भी हैं, ये सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है, नैच मत स्थानी मेरे में स्थित नहीं है। पर साथ में दूसरे 9:4 में वे कहते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानी, सब चीज तो मेरे भीतर ही है, सब जीव मुझे भीतर ही है, तो सभी जीव मेरे भीतर हैं और कुछ भी मेरे भीतर नहीं है। तो यह अद्भुत देखो बात है, परंतु वास्तव में चिन्मय भगवान में जड़ कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं। वास्तव में टोटल स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उसमें जड़ वस्तु भगवान के भीतर कुछ भी नहीं है, ये कहने का अर्थ है इसका अंतर्बहिः का। तो वो शुद्ध चिन्मय बप्पू वाले हैं, शरीर वाले हैं, और बाहर कुछ नहीं है, उनके पहुंच से परे कुछ भी नहीं है। तो यह भगवान का स्वरूप है। अब आगे का विश्वस्य अमुनि, अमुनि का अर्थ है कि ये जितने भी बताया गया आदि मध्य अंत स्व पर या अंत बही, ये जितने हैं ये अमुनि हैं। ये विश्व के जो अमुनि, ये जो सब चीजें हैं जो पहली लाइन में हैं, ये प्रारंभ विनाश मध्य इत्यादि ये सब किससे हैं? बोले यस्मात्, नेक्स्ट यस्मात्, ये भगवान से ही ये होते हैं। इस विश्व का जो प्रारंभ है अंत है, तो कृष्ण ही प्रारंभ करते हैं इस जगत का। यस्माद् विश्वस्य अमुनि, ये सब होते हैं। तो भगवान विश्व का प्रारंभ करते हैं और वही विश्व का विनाश करते हैं, सबको वे ही जन्म देते हैं और वे ही सबको मारते हैं, काल रूप में सबको वे ही मारते हैं, और उन्हीं से इस विश्व का मध्य है या अंतर है या बाहिर है सब कुछ। और विश्वस्य विश्वम च तद, नेक्स्ट, और यहां तक कि भगवान ही विश्व के रूप में हैं। इसका अर्थ इस तरह से ले रहे हैं कि अमुनि अदंतानी अदंतादीनी विश्वस्य यस्मात् भवन्ति, तो विश्वम च यद यद रूपम, माने यह विश्व भगवान का ही एक रूप है। कहने का आशय यह है कि भगवान की ही शक्ति जगत के रूप में परिणत हुई है। इसलिए एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि यह भगवान से भिन्न नहीं है, यह जो जगत है यह भगवान से भिन्न नहीं है। तो इस जगत के साथ इतना घनिष्ठ संबंध भगवान का है, प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति का प्रकाशन है, इसीलिए कहा जाता है कि यह विश्व भी भगवान का ही रूप है, भगवान ही विश्व के रूप में है। यह बात आगे कई श्लोक में यह बात कही जाएगी कि भगवान ही विश्व के रूप में है। अतएव अज्ञ विचारित्वा रितम, नेक्स्ट, रितम माने सत्यम, अतः एव सभी उक्तियों के साथ ये लगाना पड़ेगा, माने भगवान का आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, स्वय नहीं है, पर नहीं है, भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, और विश्व का अंत मध्य विनाश आदि सब भगवान से होता है। तो इस तरह से भगवान अव्यभिचारी रूप से सदा वर्तमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि जीव भी तो रहते हैं इसी तरह से, जीव का भी तो कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो भी तो है, जीव भी तो नित्य है, लेकिन जीव रहता है पर अव्यभिचारी रूप से नहीं रहता है। देखो डिफरेंस देख लो भगवान में और जीव में। व्यभिचार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज, जीव रहता है लेकिन उसमें बहुत बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। आज मनुष्य के शरीर में है, कल पशु के शरीर में रहेगा, और इसके पहले न जाने किस स्थिति में वो रहा है। पर मनुष्य शरीर में भी वह अव्यभिचारी नहीं रहता है, बचपन अवस्था है, जवानी आती है, कुमार अवस्था होती है, वार्धक्य बुढ़ापा आ जाता है। कभी कभी ऑफिस में बैठा है और कभी हॉस्पिटल में चला गया हुआ, तो अव्यवचारी रूप उसका नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गया। भगवान ऐसे कभी नहीं होते हैं, ऐसा कभी नहीं आएगा। आप देखेंगे कि भगवान के डायरी में कि बैकुंठ में भगवान सुख से रहते हैं और किसी न किसी दिन वे हॉस्पिटल में चले गए, भर्ती हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी उनकी स्थिति है वह अव्यभिचारी है। अव्यभिचारी स्थिति, उन व्यभिचार का अर्थ होता है, जैसे व्यभिचार तीन शब्दों से बना है, वी अभी और चार, इसको व्यभिचार कहते हैं। चार माने चलना, परिवर्तन। तो कोई व्यक्ति एक स्थिति में न रह सके, इसको व्यभिचार कहते हैं। आज स्वस्थ है, सुंदर है, कल रोगी हो जाएगा, तो फिर व्यभिचारी हो गया, नहीं हुआ ना, व्यभिचारी हो गया, अव्यभिचारी नहीं हुआ है। कुरूप हो जाएगा, बुढ़ापा में देखो शरीर का सौंदर्य सब चला जाता है, फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्रोध आ जाता है, काम लोभ, नाना प्रकार की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। कल हार जाएंगे कोई भी इलेक्शन में तो हम भूतपूर्व लिखेंगे उसके अंदर में। कभी कभी लोग इसी बात से संतोष कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई एमएलए था, विधायक था, और वो हार गया है, तो इसका हारने के बाद वह ये लिखता कि भूतपूर्व विधायक, तो उसी से वो संतोष कर लेता है, लिख करके चलो कुछ बात नहीं है, लेकिन कुछ समय तो मैं विधायक था। लेकिन वे विचारी स्थिति हो गई ना, ये तो परिवर्तन हो गया ना, कल हार गया आज जीत गया, आज हार गया, वे विचारी स्थिति हो गई, बदल जाता है। पर भगवान जितना सुंदर है, जितना वे धनी है, जितना वे परम बुद्धिमान है, सब कुछ है, एक रस स्थिति रहती है उनकी। उनके धन में कभी कमी नहीं होती है, उनके सौंदर्य में कभी कमी नहीं होती है, उनकी बुद्धि में कभी कोई कमी नहीं होती है, उनके ज्ञान में कभी कोई कमी नहीं होती है, इसको अव्यभिचारी स्थिति भगवान की कहते हैं। इसीलिए इसको रितम सत्य कहा गया है, रितम। तो अतएव अव्यभिचारित्वात् रितम सत्यम, भगवान सत्य हैं, और कोई भी सत्य नहीं है भगवान के अलावा। जीव रहेगा लेकिन बहुत फजीयत में पड़ा रहेगा जीव, इसके रहने से फायदा क्या हुआ। भगवान भी गीता में कहते हैं कि इसको शस्त्र वेपन्स काट नहीं सकते हैं, इसको पानी गीला नहीं कर सकता है, इसको हवा सुखा नहीं सकती है, इसको अग्नि जला नहीं सकती है। भले यह जीवित रहे लेकिन जीवित रहने पर यह किस काम का है, आत्मा रहेगा पर यह शरीर छोड़कर के दूसरे में चला जाएगा, दूसरा छोड़कर के तीसरे में चला जाएगा, और उसमें बदलता रहता है। लेकिन इसको यह नहीं कहा जाता कि यह सत्य है। यह डिफरेंस है भगवान में और आत्मा में। रहने से हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। भगवान रितम है, भगवान सत्य है। तो रितम का अर्थ है कि एक समान स्थिति, परम सत्य, जैसा प्रारंभ में थे वैसा वे अंत में भी रहेंगे, सब समय रितम सत्य, और अंत में महत। महत का अर्थ है कि परिपूर्ण ब्रह्म। तो भगवान कैसे हैं, बोले महत हैं। महत का अर्थ है कि परिपूर्ण, जो सब प्रकार से पूर्ण है, कंप्लीट पूर्ण है। एक व्यक्ति अनंत कोटि जीवों को देखो खिला रहा है, पिला रहा है, सारी व्यवस्था किया है, लेकिन हम अनंत कोटि जीव मिल करके भी और एक व्यक्ति का पालन नहीं कर सकते हैं। इस समय हमारे इंडिया में हमारे मनुष्यों की संख्या है 1.25 अरब, माने 125 करोड़ हमारी आबादी है, लेकिन ये सब 125 करोड़ मनुष्य में से सब मिल करके भी और एक ग्राम झूली माने मट्टी लेकर के नहीं आए हैं। ये भी एक ग्राम मट्टी लेकर के नहीं आए, एक छटाक भूमि ये लेकर के नहीं आए हैं, ये कह सकते हैं ये भूमि मेरी है। अभी तो 125 करोड़ इस समय है, और कितना कितना कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों मर गए, और कितना कितना आगे भी होंगे करोड़ों करोड़ों दुनिया में और भी मनुष्य हैं। तो क्या वे एक छटाक भी, एक छटाक माने समझ लो 5 ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम लेकर के आए हैं। ये छटाक पहले होता था वजन में, शेर छटाक ये होता था, बाद में किलो आया था। तो सब मिलकर के भी एक छटाक भी भूमि क्या लेकर के भी आए हैं? एक व्यक्ति है ना जिसने इस भूमि की व्यवस्था किया है, कौन है? बोले कृष्ण। और भूमि में अनेक प्रकार के उपादेय वस्तुओं को उसने भर दिया है, हवा पानी दिया है। तो एको बहुनाम यो विद्याति कामान, भगवान एक है और बहुनाम अनंत कोटि जीवों के भरण पोषण की व्यवस्था वे किए हैं। तो यह है भगवान की भगवत्ता, इसीलिए उनको महत कहते हैं। परिपूर्णम, और इसी पूर्णता के कारण उनको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ ही होता है कि बृहद, महत, सब तरह से परिपूर्ण। भगवान को कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है, बल्कि अन्य की कमियों को भगवान पूरा करते हैं। आज हमको धन चाहिए, स्त्री चाहिए, घर चाहिए, खाने को चाहिए, अपूर्ण, इन सब की कमी कौन पूर्ण करते हैं? कृष्ण। वही सबको दे रहे हैं, तो उनको महत कहते हैं। परिपूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण। और मनुष्य और देवता सब प्रकार से अपूर्ण है, देवता भी अपूर्ण है, अपूर्ण सब प्रकार से है। पूर्ण का अर्थ होता है कि जो दूसरों को दे उसको बोलते हैं पूर्ण, और अपूर्ण का अर्थ होता है जो दूसरों से हमेशा ले उसको अपूर्ण कहते हैं। भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनके पास सब कुछ भरा पड़ा है कृष्ण के पास, तब ना वे देते हैं ना सबको। यह है भगवान की पूर्णता, सबको वे दे रहे हैं। और जीव केवल ले रहा है, लिए बिना उसका काम चल ही नहीं सकता है। किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि तुम भगवान का कुछ भी मत लो और अपने आप जियो तुम, और यह कह दिया जाए कि भगवान ने पृथ्वी बनाया है, पृथ्वी खाली करो तुम, ये पृथ्वी तुम्हारी नहीं है, भगवान की, खाली करो, तुम पृथ्वी पर मत रहो, तो वो व्यक्ति सोचेगा ठीक है हम पृथ्वी खाली कर देते हैं, हम आकाश में चले जाते हैं। तो ये ऑर्डर आएगा कि आकाश भी भगवान का है, ये समुद्र भी भगवान का है, तुम पहले कहां खड़े रहोगे ये विचार करो, ये देखो कहां वो रहेगा बताइए। तो आकाश, भूमि, जल, अग्नि, इनमें से कौन चीज वो निर्माण किया है? कोई कुछ भी चीज हम लोग निर्माण नहीं किए हैं। और यह कहा जाए कि भगवान की बनाई हुई किसी चीज को मत खाओ, सांस मत लो हवा में, तुम अपने लिए हवा बना लो, अपने लिए पानी बना लो, कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान का एक नाम है महत, महान, परिपूर्ण ब्रह्म, और सबकी आवश्यकता वही पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का निर्धारण इस श्लोक में किया गया है। और अब जो अगला श्लोक आएगा उसकी भूमिका आपको बता देता हूं। और अब ये कहते हैं कि ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं जो न अंतर न बही, न ये जो जितने भी है महत, ये जो हैं इनकी, ऐसे प्रभु की मैं, स्वयंभू मनु कहते हैं, मैं शरण ले रहा हूं। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि यदि विश्व भी भगवान का एक रूप है, जैसा ही आया अभी कि कौन सा शब्द था वो, यस्मात, यस्मात विश्वस्य अमुनि, विश्व भी यदि भगवान का एक रूप है, तो एक प्रकार से भगवान ही विश्व के रूप में है। तो फिर भगवान में जन्म आदि का अभाव कैसे है? आप कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता है, अब विश्व ही भगवान के रूप में है, तो विश्व का तो जन्म होता है, विश्व का प्रलय भी होता है, मरण भी होता है, इसका प्रलय होता है, इसकी मध्य की स्थिति भी, आज जो स्थिति है वो मध्य की स्थिति है। तो जब भगवान ही विश्व के रूप में है तो विश्व में तो देखा जाता है कि इसका जन्म है, अंत है, मध्य है, सब कुछ है, तो फिर भगवान में जन्म आदि का अभाव कैसे है? ये एक प्रश्न उठता है। और स्वप्रकाशत्वम व कथम, ये कैसे कहा जाएगा कि भगवान स्वप्रकाश है, क्योंकि ये जगत जो है ये तो स्वप्रकाश है नहीं, इसका प्रकाशक कोई और है। तो यदि भगवान को जगत के रूप में मान लिया जाए तो जन्म आदि का अभाव सिद्ध नहीं होता है और स्वप्रकाशत्व का भी सिद्ध नहीं होता है। तथा जगत के जन्म आदि करने वाले कौन है? बोले कृष्ण है, भगवान है। तो जगत जन्मात्मी कर्तात्व न, यदि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, तो अवश्य इसके लिए उनमें तो कुछ विकार आएगा ही, भगवान का भी अंदर विकार आना चाहिए फिर, जब जन्म विश्व का करते हैं, क्योंकि भगवान ही विश्वगुरु के रूप में आप कह रहे हैं। क्रोध आएगा भगवान को, ममता आएगी, राग आएगा, जैसा हम लोगों में आता है। तो इतना विशाल जगत की सृष्टि करना, चलाना, उनको चिंता होती है, ये करना वो करना, आज ये करना आज वो करना। हम छोटा सा एक एस्टैब्लिशमेंट चलाते हैं तो दुनिया भर के प्लानिंग करते हैं, ये करना वो करना, तो किसी पर क्रोध होता होगा क्योंकि वही मारते भी हैं, तो वे भिकारी सिद्ध हुए ना। तो जो भिकारी हो गया उसका सत्यत्व और पूर्णत्व कैसे संभव है? कैसे माना जाएगा कि वह अव्यभिचारी रूप में रहता है, रितम और महत रहता है, कैसे एक रस स्थिति में वह रहता है और वह पूर्ण है, ये कैसे स्वीकार कर लिया जाएगा? तो इसी को वे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, भगवान सब तरह से परिपूर्ण है और वे सत्य हैं। इसी की व्याख्या आप अगले श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? ला रहे हो, माइक ला रहे
हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जी, जैसा कि अर्जुन भगवद गीता में भगवान को सरेंडर करते हैं पूरी तरह से, जैसा आपने बोला विराट रूप दिखाए भगवान को, तो अर्जुन कौन सा भाव में से थे जो कि विराट रूप दिखाए भगवान को, तो उस भाव को हम कैसे समझ सकते हैं?
वो तो लास्ट में आया ना भाव, तो 18वें अध्याय में आया ना, अभी तो 11वां अध्याय चल रहा है, तो 11वें अध्याय में तो मोह में है ना वे। 18वें अध्याय के भी अंत में आता है कि अब आपकी बात मैं मानूंगा, हम करीष्ये तब वचनम तब है, मैं आपकी बात मानूंगा, तब जाके वो सरेंडर होते हैं कि आप जो कहते हैं वह सब ठीक है, और तब जाकर की स्थिति आती है कि वह सोचता है कि भगवान के अंदर सब कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ भी जड़ उनके अंदर नहीं है।
हरे कृष्ण जी, आप बता रहे थे कि भगवान के भीतर और बाहर कुछ भी नहीं है, बता रहे थे ऐसा, मैं आपने बोला कि भगवान के भीतर कुछ भी नहीं है क्योंकि भगवान के भीतर सब कुछ स्पिरिचुअल है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल इनसाइड द लॉर्ड, लेकिन जो हम ये जगत देखते हैं तो भौतिक है और भौतिक जगत भगवान से ही आया है, तो अगर भगवान के संदर्भ सब कुछ आध्यात्मिक है तो फिर ये भौतिक कैसे भगवान से आया?
भगवान के अंदर ये शरीर नहीं रहता हमारा, हम आत्मा के रूप में रहते हैं, तो आत्मा कौन है? आध्यात्मिक, आत्मा जड़ नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान के भीतर जड़ नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम शरीर रूप से नहीं रहते हैं उसके अंदर, हम हैं जो अभी हैं वो जड़ रूप में हैं, हमारे अंदर आत्मा है वो है आध्यात्मिक। भगवान के अंदर तो सब, जब हम मर जाएंगे तो हमारी आत्मा प्रलय हो जाएगा तो सब भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं, जितनी भी आत्माएं हैं वे सब, और फिर उनको प्रकृति के ऊपर जब दृश्यपात करते हैं तो उन आत्माओं को निकालते हैं, शरीर को नहीं निकालते हैं, तब प्रकृति उनको शरीर देती है,
हाँ, मतलब मेरा प्रश्न वही है प्रभु जी, तो प्रकृति भी भगवान से ही आई है जो भौतिक प्रकृति है,
तो भगवान की शक्ति तो, है ना वो तो।
हाँ मैं मतलब वही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो अगर भवन के अंदर कुछ भी सब कुछ आध्यात्मिक है तो फिर वो भौतिक कहाँ से आया, कैसे आया।
प्रकृति भी देखो दो प्रकार की है, एक परा एक अपरा। आज जो प्रकृति हम देख रहे हैं वो अपरा प्रकृति है, भगवान के अंदर जो प्रकृति रहती है वो परा प्रकृति रहती है। इसलिए भगवान के अंदर जो भी चीज है सब आध्यात्मिक है, परा चीज आध्यात्मिक होती है। हो गया, और किसी का कोई प्रश्न प्रभु जी को दीजिए।
Prabhuji, Hare Krishna. In the Yisa Upanishad's first sloka now, it's also mentioned that everything that emanates from the God, it's also complete. The Lord is complete by Himself and everything that emanates from Him is also complete. Here also it is mentioned now that the universe maintains is emanating from Him only. So, when everything is emanating from Him, the dualities which are absent in the Lord, they are present in us. So, what is the source of these dualities? From where did they emanate and why are they in existence?
जोर से बोलिए, सुना नहीं। Source of, उसके आगे बोलिए आप। Source of humanity. Duality. Duality माने क्या? Source of, अच्छा अच्छा ये जितने ड्यूअलिटी है ये सब माइक है, ये सब कोई स्पिरिचुअल नहीं है। तो इसका सोर्स तो प्रकृति है, और क्या है इसका सोर्स तो आदि अंत, ये सब चीजें माइक हैं। ये कोई हमारे जितना शरीर मर जाएगा, आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल है, वो है स्पिरिचुअल। बाकी ये जितने सोर्स हैं वे तो सब माइक हैं। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, ये स्तुति कौन कर रहे हैं जरा बताइए। कौन? मनु। कौन सा मनु? स्वयंभू मनु। ये और दो चार श्लोक आएंगे इसी के, बहुत अच्छी स्तुति है स्वयंभू मनु की। और बताइए ये महत का जो शब्द मैंने बताया क्या मतलब अर्थ बताया मैंने? महत का क्या अर्थ होता है? पूर्ण, परिपूर्ण महत। तो घर जाकर के इसको पढ़िएगा तब आपको ख्याल में आएगा कि इसकी व्याख्या ऐसी हुई थी, ऐसी हुई थी। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की।